क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम तो हम आपको विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, हार्दिक बधाइयां देना चाहेंगे और साथ ही परिचय देना चाहेंगे जो हमारे सामने बैठी हैं उनका, जो इतनी दूर से हमारे साथ आई हैं आज। और आपका नाम है डॉक्टर क्रिस्टीना डोलिनिना, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद जी।
आप लिथुआनिया से हैं।
हाँ जी।
भारतीय भाषाओं की विशेषज्ञ हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इतना ही नहीं, ओडिसी नृत्य में आप स्नातक हैं। आप कथक नृत्य की माहिर हैं और नाट्य देवी डांस थिएटर की संस्थापक भी हैं। लिथुआनियाई फोरम की अध्यक्षा हैं। इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कैसे संभालती होंगी और कैसे उनके साथ जुड़ती होंगी, कैसे आगे बढ़ती होंगी, देखकर ही थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन आज आप हमारे साथ हैं तो हमारे प्रश्नों का जवाब हम आपसे चाहेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमने तो आपके बारे में बता दिया इतना कुछ, आप भी कुछ अपने बारे में जो छूट गया हो कृपया बताएं।
जी, सबको सादर प्रणाम है मेरी तरफ से और सभी को मेरी तरफ से भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं हैं। यहाँ पे मैं आ गई मॉरिशस में, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो अपने बारे में अगर बताऊँ तो जैसे लिथुआनिया से हूँ, काफ़ी दूर है। जब अभी आ रही थी तो -20 डिग्री सेल्सियस का सर्दियाँ थी,
बहुत ठंड,
बहुत ठंड है, बर्फ बहुत है। तो यहाँ आके थोड़ा आश्चर्य भी हुई थी, कैसे हो सकता है इतनी गर्मी,
एकदम से इतनी गर्मी। हाँ जी, बिल्कुल।
अपने बारे में अगर बताऊँ तो सबसे पहले की रुचि हिंदियन भाषाओं में या हिंदी, खास करके हिंदी में कैसे हुई, तो मैं रशियन फिलोलॉजी की स्टूडेंट थी कुछ 25 साल पहले। और मुझे लगा कि मुझे कुछ दिलचस्प सीखना चाहिए,
कुछ नया,
कुछ जो यहाँ पे, मतलब
जो वहाँ आता हो।
हाँ जी, जो वहाँ नहीं है।
बिल्कुल।
तो मैंने चूज किया तुर्किश लैंग्वेज और हिंदी भाषा, दो कोर्सेज चूज किया मैंने। लेकिन ऐसा हो गया कि तुर्किश शुरू से ही कुछ, मतलब अच्छा तो लगा लेकिन कुछ उससे संबंध नहीं हो पाए,
मन नहीं सैटिस्फाई हुआ
वही तो। और हिंदी का जो साउंड है, जो वो संगीत जैसी है,
उसका जो प्रथम अनुभव था आपका कि आप क्यों उस हिंदी भाषा की ओर खींच कर आई, वो
तो
कैसे हुआ?
संभावनाएं भी तो मतलब है नहीं। और उस समय ये कुछ 1993 या 2000 के आसपास था, तो जो संबंध, मतलब काफ़ी यूरोपियन लैंग्वेज सीख सकती थी जो भी कुछ, मतलब लेकिन एशियाई भाषाओं से अभी नया सेंटर, उस समय नया सेंटर का स्थापना हुई थी। तो इसमें जापानीज और संस्कृत और हिंदी पर आई जाती थी। तो मैंने सोचा मैं हिंदी कोशिश करूँगी सीखने की, तो और अच्छा लगा। जैसे मैंने बताया कि हिंदी एक उसका जो स्वर है, जो थोड़ा सा संगीत जैसे
बोलने का ढंग,
हाँ, जो बोलने का ढंग है थोड़ा संगीत जैसे लग रहा था मुझे। वो बहुत सॉफ्ट साउंड्स है और मुझे शुरू से ही ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं एक साल पढ़ के सौभाग्य से मुझे ICCR का वो जो स्कॉलरशिप होती है केंद्रीय हिंदी संस्थान की मिली थी, और मैं एक साल के लिए आगरा गई थी। एक साल के लिए आगरा गई थी, तब बिल्कुल मुझे इतनी हिंदी तो नहीं, बस लिपियां ही,
शुरुआत की,
बिल्कुल
शुरुआत।
लेकिन उधर आगरा जाके और अच्छा लगा। तो जब मैं आगरा से वापस आई, मैंने सोचा कि अभी तो मुझे और सीखनी है हिंदी, ज़्यादा सीखनी, समझनी है हिंदी, और अगर मैं बोल पाऊँगी हिंदी में कितनी मतलब कितनी अच्छी बात होगी.
आज आज देखकर लग रहा है कि कितनी अच्छी बात है.
थैंक यू
कि इतना बढ़िया आप हिंदी में बात कर रही हैं.
कोशिश करती हूँ.
कोशिश नहीं, आप तो लगता है कि बहुतों से ज्यादा अच्छा बोल रही हैं.
धन्यवाद आपके लिए. फिर उसके बाद दो साल के बाद मैं फिर आगरा गई थी एक साल के लिए. तो अगर मैं पहली बार 100 कक्षा में गई थी तो अभी दो साल के बाद 300 कक्षा में गई थी. और थोड़ा सा साहित्य से भी पहचान हुआ था. वो साहित्य तो बहुत अच्छा लगा मुझे. हिंदी साहित्य खास करके भक्ति काल में मेरी बहुत दिलचस्पी रही. भक्ति काल और आधुनिक काल के जो छायावाद के
कवि
है उनमें बहुत अच्छे लगे मुझे. तो मैंने सोचा और कुछ करना है. तो फिर संभावनाएं बहुत कम थी उस समय. हमारा जो लिथुएनिया उसका स्वतंत्र हो गई थी 1991 में. तो नया देश हुआ था. दूतावास भारतीय दूतावास तो था ही नहीं था. हम बेलारूस पहले बिलोंग करते थे फिर उसके बाद वर्षो में. तो उस समय बेलारूस में वो जो मिशन थे उसमें मैं रोज रोज फोन करके बोलती थी कि मुझे हिंदी सीखनी है. और तब मेरा पहचान नृत्य से भी हुआ था. और ये और एक कहानी है क्योंकि मैं
यही पूछने वाली थी.
अच्छा,
कि नृत्य की रुचि आपके मन में कैसे उठी, कैसे जागी ये कि हाँ मुझे नृत्य सीखना है.
वही तो मैं पहले थिएटर में थी. रुचि तो हमेशा
अच्छा,
रही थी.
इसीलिए थिएटर से जुड़ करके आप नृत्य की ओर आए.
और जो उस समय लिथुएनिया में डांस नृत्य था
जी.
उसका तरीका थोड़ा उस समय मुझे पसंद में नहीं आया. वो ज्यादा दिमाग वाला जैसे
अच्छा.
बोलते कॉन्सेप्चुअल डांस. वो जो मॉडर्न डांस है वो
जी.
काफी रफ भी है
जी.
और वो दिमाग से है. और मुझे लगा कि अगर कला है तो दिल से
होनी चाहिए
है ना. तो जब मैं दूसरी बार आगरा में आई मैंने सोचा मैं कुछ देख के कुछ सीख लूंगी. और तब मुझे एक टीचर मिला था गुरुजी. लेकिन वो मजाकी कहानी है.
अच्छा.
क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं तुमको कथक सिखाऊंगा. मैंने बोला बढ़िया. लेकिन अंत में क्या हुआ मैं कथक से सिर्फ था थे थे थत इतना ही सीखा था
जी.
और उसके साथ बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग के बुम्बरो
बहुत सुंदर.
ये सोच के चली थी कि ये ही कथक है.
अच्छा,
मतलब उस
समय आपको नृत्य और ये कथक में जो
कुछ नहीं पता था
वो नहीं पता
कुछ पता नहीं था. लेकिन जब मैं वापस आई थी और मैं फिर उधर उधर कुछ जानकारी मतलब इकट्ठा करने लगी थी कि ये क्या है, क्या भारतीय नृत्य क्या है. तो मुझे बहुत सारे चीजें
कुछ नया
हाँ कुछ नया,
नया लगा
पता चला. तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ये भी करना है. तो उसके लिए मैं बहुत एम्बेसी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे भारत में जाना या तो हिंदी सीखने के लिए. मतलब मुझे मेरे मन में दोनों ही
नृत्य और भाषा
हाँ
दोनों.
जी दोनों दोनों सीखना था मुझे. और फिर एम्बेसी की तरफ ICCR की तरफ मुझे JNU में एडमिशन और स्कॉलरशिप दो साल के लिए मिला था. तो मैं दिल्ली गई थी JNU में एनरोल मतलब स्कूल ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस उसमें एनरोल हो गई मैं.
भाषा आपने भारत में सीखी हिंदी भाषा और तभी वहाँ रहते हुए वहाँ की संस्कृति भी सीखी होगी देखी होगी पहचान हुई संस्कृति से बोलचाल से पूजा पाठ जो होता है हमारे संस्कृति में जो भी चीज़ें आती हैं उसको आपने वहाँ से सीखा होगा वहाँ से आपको मिला.
हाँ, दिल्ली.
लेकिन आप अपने जीवन में भाषा और संस्कृति को कहाँ पाती हैं?
मुझे लगता है कला और भाषा उसमें भी संस्कृति आती है ना. क्योंकि इसी जो मेन है कला है. मुझे लगता है कि मानवता का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. क्योंकि हमारे पास अगर कला नहीं होती तो हम मनुष्य कैसे रहते. हम तो
बहुत सुंदर
है ना. तो वही लैंग्वेज जो है भाषा जो है वो जानवर से हमें अलग करती है. और कला भी कि हम अपने अनुभव को अलग अलग तरीके से कैसे दिखा
सकते अपने अंतर्मन को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं.
हाँ, वही है.
तो आपने अपने आप को उस दिशा की ओर बढ़ाया और अपने आप को वहां पर आज आप कहाँ खड़ा पाती हैं?
पता नहीं, वो तो आप देख लीजिएगा, डांस नृत्य करती हूँ, नृत्य दूसरों को भी सिखाती हूँ बहुत खुशी से, क्योंकि मुझे लगता है कि नृत्य भी एक एक साधना है, जैसे भाषा भी एक साधना है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों को थोड़ा आगे बढ़ाओ, थोड़ा मतलब अपने जीवन में कि मैं इसको मतलब ये मेरा अंशी बन गए दोनों।
आपने इतने वर्ष भारत में बिताए, स्पेशली दिल्ली में बिताए।
हाँ जी, दिल्ली में,
दिल्ली में बिताए। दिल्ली ही तो रानी है भारत की, तो वहाँ पर अध्यापन के दौरान आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो जो आप हमारे साथ बांटना चाहें?
वैसे सच बताओ तो काफी कठिनाई मिली थी मुझे उधर जाके,
तो आरंभ में आप परदेश से जाते हैं ना, आप किसी को जानते हैं ना, खाना पीना हर चीज की तरफ से जो है
कठिनाई आ गई। और खास करके जब मैं हिंदी क्लास में पहुंची थी, और शायद पहले से जो भी कुछ साहित्य के संक्षिप्त इतिहास या कुछ ऐसे हुआ मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं क्लास में आके मुझे कक्षे में आके मुझे समझ में आ गया कि ये सब कुछ तो अंग्रेजी में नहीं होगा,
बिल्कुल
ये हिंदी में बड़ा जाता है सब कुछ। और मैं डर गई सच्ची में, इतनी डर, क्योंकि मैं कैसे समझूंगी, और ये तो भाषा मतलब जैसे
बिल्कुल
प्रोफेसर लोग तो उनकी भाषा तो क्या खास है, शुद्ध,
उनको सुनने में और समझने में भी समय लगता है,
काफी समय। लेकिन मैं क्या बताना चाहती हूँ कि मेरे जो दोस्त मिले थे क्लासमेट्स जो मिले थे, जिसकी मदद से मैं ये सब कुछ कर पाई, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे बहुत सहायता मिली थी, बहुत सहारा मिला।
यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगी, जब आपको उस भाषा के मित्र मिल जाते हैं, जान पहचान के मिल जाते हैं, तो उनसे बात करते करते ही आप भाषा को सीख सकते। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी अब संकोच करेंगे कि नहीं मैं नहीं बोलती इस भाषा में, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप उस भाषा को स्वयं ना बोलना कर शुरू करें, ना उसके साथ जीना आवश्यक है।
जरूर, मतलब वातावरण भी होना चाहिए,
वातावरण हो,
भाषी वातावरण भी चाहिए,
भाषा बिल्कुल उसका वातावरण, और स्वयं को उसमें ढालना आवश्यक है, तभी आप सीख सकते हैं। अगर आप अपने को एक कोने में कर देंगे तो आप कभी भाषा की ओर नहीं बढ़ सकते, है ना। और भाषा, संस्कृति, नृत्य, इसमें तो आप पारंगत हैं, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ जब आपने अपना ही कॉलेज, अपना ही संस्थान खोला हुआ है, लेकिन एक बात यह है, एक प्रश्न ये उठता है कि आप लिथुआनिया से हैं, आप अभी आपने बताया कि हिंदी के बारे में, तो वहाँ पर हिंदी का क्या स्थान है?
क्या स्थान है? हाँ, मतलब क्या बताऊँ, सच बताना चाहिए
बिल्कुल,
ना मुझे?
बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा देश है, दूसरी भाषा है, जो सच तो आएगा ही।
हाँ जी, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम ही है, अभी शायद बढ़ेगी, क्योंकि इसी साल में, जस्ट आधे साल पहले, इंडियन मिशन भी स्थापित हुई थी। इसका मतलब कि ज्यादा लोग आ जाएंगे, मतलब समुदाय भर जाएगा भारतीय भारतीय लोगों के, फिर जरूर मतलब हिंदी की जरूरत भर जाएगी ना, आवश्यकता भर जाएगी, नृत्य का भी शायद ज्यादा रुचि,
सबको भी स्थान मिलेगा।
हाँ जी, क्योंकि अभी तक काफी मुश्किल था
जी।
मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ विश्वविद्यालय में, ये भी बताना जरूरी है कि बच्चों को हम नहीं पढ़ाते हैं, मतलब स्कूल में विद्यालय में कोई जगह नहीं है हिंदी की।
अच्छा,
और क्योंकि इंडियन लोग भी
लोग
नहीं रहते
ही
ना,
नहीं, लोग
अगर
ही नहीं,
फैमिलीज होते, परिवार होते, बच्चे होते इंडियन, तो उनको शायद कुछ एडजस्टमेंट हो जाते, लेकिन अभी तो है नहीं,
अभी नहीं।
तो फिर स्कूल में तो लैंग्वेज नहीं है हिंदी। विश्वविद्यालय वो जो हम एशियाई और ट्रांसकल्चरल अध्ययन का जो संस्थान है जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो इसमें हिंदी अभी 20 साल से
जी
पढ़ाई जाती है।
20 साल से?
हाँ जी, 1995 से।
ये मतलब बच्चों की तो नहीं है,
बड़े नहीं, नहीं बड़ों,
वयस्कों के लिए,
मतलब छात्रों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र है उसको, और जो बीए प्रोग्राम करते हैं इंडोलॉजी में या साउथ एशियन स्टडीज जो हम करते हैं, उनको संस्कृत और हिंदी अनिवार्य है। अच्छा। उनको सीखना तो सबसे पहले वो संस्कृत से शुरू करते, तो इस तरफ देवनागरी लिपि से और इंडो आर्यन लैंग्वेज का जो मतलब भाषाओं की जो इतिहास है उससे पहचान हो जाता है। और फिर सेकंड सेमेस्टर से हिंदी भी सिखाई जाती है उनको, व्याकरण सब कुछ, मौखिक मतलब सब कुछ। और लास्ट में तीसरे साल में उनको भी थोड़ा सा संक्षिप्त में साहित्य का कोर्स दिया जाता है।
अच्छा,
हाँ जी,
बहुत बहुत आभार आप आई। चलिए, नमस्कार।
नमस्कार।
क्षितिज, क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर।